1990 में क्या ऐसी खास बात थी जो इंडी पॉप उभर के आ गया?
अमित जी, पहले तो मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा कि ये इंडी पॉप है क्या। काफी लोगों को ये कि ये गलत धारणा है कि इसको इंडियन पॉप कहा जाता है, लेकिन ये इंडी पॉप का मतलब होता है, इंडी मतलब इंडिपेंडेंट और पॉप मतलब पॉपुलर।
ओके,
तो ये इंडिपेंडेंट और पॉपुलर, क्योंकि एक पैरेलल म्यूजिक इंडस्ट्री खड़ी होने लगी 90s में, और ये सब कुछ हुआ कंप्यूटर के आगमन से
और इस खास गाने से।
जी बिल्कुल, जिसका नाम है ठंडा ठंडा पानी। तो ये एक गाना जब जिस समय आया, जिसको जिसको कहते हैं, एक तरह से एक धारणा ही चेंज हो गई जिस तरह से लोग म्यूजिक सुनते थे, जिस तरह से संगीत को समझते थे, जानते थे, क्योंकि ज्यादातर संगीत जो है सिर्फ बॉलीवुड के माध्यम से सुना जाता था और देखा भी जाता था।
और ये एक तरीके से पहला रैप था जो कि बॉलीवुड के बाहर था।
जी, क्योंकि ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन पूरे विश्व में पॉपुलर म्यूजिक स्टार्ट ही या शुरुआत जो हुई उसकी वो रैप म्यूजिक से ही हुई। और यहीं पर जो है सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है बाबा साहिल का, वो यहीं पर आता है कि वो रैप पहले रैपर हुए हिंदुस्तान के। मेरे सर में था दर्द, बुखार मुझे खाली जीवन बोली, मैंने बोला यो गली जोगी मैनेजर कुछ पूछा सुनते हैं आप, मैंने मांगा नहीं खाना तंदूरी, मुझे लगते वो लंगूरी बस हैपनिंग मैन, बोला सर सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं यहां हूं एम्प्लॉय, मुझे नौकरी ना भाई फिर भी मैं करूंगा, बोलिए बोलिए क्या आपको चाहिए। तो इस तरह के म्यूजिक में, इस तरह के संगीत में कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशंस रहे जिनकी वजह से ये एकदम से पॉपुलर म्यूजिक की श्रेणी में आ गया। पहला तो कारण ये रहा कि 90s का जो म्यूजिक था वो पहली बार जो था वो कंप्यूटर पे बन रहा था। तो पहले जो संगीत था वो टेप पे रिकॉर्ड हुआ करता था, करीब 50 या 60 म्यूजिशियन इकट्ठे बैठ के रिकॉर्डिंग करा करते थे, लाइव रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी। लेकिन ये कंप्यूटर के आने से काफी सारी चीजें जो है, जिसको आज के समय में हम डिजिटल इकोनॉमी बोलते हैं, तो इसका सही आगमन एक्चुअली 90s में शुरू हुआ। और संगीत की दुनिया में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब भी आप कुछ नया लेकर आते हैं तो लोगों की तरफ से रिस्पांस हमेशा मिलता है। जब 90s तक का जो म्यूजिक था, क्योंकि वो सिर्फ बॉलीवुड मूवीज के थ्रू चला करता था, ये पहली बार ऐसा हुआ कि रैप कोई गा रहा है जो सॉन्ग का स्ट्रक्चर होता है, जैसे जो एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ करता था सॉन्ग का, अब वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। बीट्स नहीं आने लगी, बीट्स का इंट्रोडक्शन ही 90s में हुआ। और पहली बार ऐसा हुआ कि एक गायक जो है बहुत सारे भावों को जो है करीब 30-35 लाइनों में गाता चला गया, और ये एक बहुत ही भाव विभोर अनुभव था बहुत लोगों के लिए। तो ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से, और ये आज भी चलता है, आज भी जब कोई नई चीज आती है तो वो इट हैज गॉट अ मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है उसका।
कितने ज्यादा ये गाने जो गीत उस समय बन रहे थे वेस्टर्न म्यूजिक से इंस्पायर्ड थे रैप के?
काफी हद तक ज्यादातर जो संगीत उस समय बनने लगा वो बाहर से बहुत ज्यादा प्रभावित था। बट इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो एज अ कैटलिस्ट जिसने काम किया बाकी सिंगर्स के लिए भी, एक कंपनी उस टाइम लॉन्च हुई थी, म्यूजिक कंपनी जिसका नाम था मैग्ना साउंड। और क्योंकि उस टाइम ऐसी कोई कंपनी थी नहीं जो किसी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सामने लेकर आ सके, मैग्ना साउंड ने ये चांस लिया और कुछ इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस को साइन किया, जिसमें से बाबा साहिल सबसे पहले थे।
जी।
हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स उस लेवल के नहीं थे।
जी।
तो उस टाइम बाली ब्रह्म भट्ट एक नाम हुआ करता था, और मतलब जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज के पीछे उनका नाम है। तो ये जो सारा तालमेल जो इकट्ठा बन के बैठा, तो ये बाबा साहिल के फेवर में सबसे पहले बहुत बहुत बढ़िया आया।
मोहित, जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ प्रोड्यूसर का कॉन्सेप्ट नहीं था, वेस्ट में तो था, पॉप संगीत में था, लेकिन हमारे यहाँ म्यूजिक कंपोजर हुआ करते थे, म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन ये प्रोड्यूसर का क्या काम होता था?
प्रोड्यूसर का काम, क्योंकि जो प्रोड्यूसर का काम म्यूजिक डायरेक्टर से डिफरेंट इसलिए था क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर तो हमेशा सिर्फ बॉलीवुड मूवी के लिए, फिल्म के लिए म्यूजिक दे रहे थे, तो उनके पास डायरेक्शंस बहुत थी। तो एक मूवी का डायरेक्टर जो है, जो असली डायरेक्टर होता है, वो बताता है, एक स्टोरी लाइन बताता है कि इस तरह से म्यूजिक बनेगा, ये लिरिक्स ठीक है, ये लिरिक्स ठीक नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, जब आप पॉपुलर म्यूजिक में जब आप जाते हैं तो वहां कोई डायरेक्शन देने वाला होना बहुत जरूरी है
जी।
तो वो जो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का रोल था वो टेक्निकल भी था कि किस तरह से म्यूजिक बनेगा, और क्रिएटिव भी था कि म्यूजिक के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट होने चाहिए।
और 1990 का जो दशक था इंडी पॉप संगीत में, खासतौर पर आपने बाली ब्रह्मभट्ट की बात की, ये पंजाबी संगीत को काफी उभार के लेके आए, नॉर्थ इंडियन जो संगीत था खासतौर पे पंजाबी, जो कि फिल्मों में भी उस समय चल रहा था, लेकिन उसके साथ इस खास संगीत को उन्होंने पेपी बना दिया पंजाबी नंबर्स को।
जी, जब ये जब पॉपुलर म्यूजिक एक्चुअली भारत में शुरू हुआ और स्पेशली मिड 90s में, तो ये डिमांड आने लगी कि, और फिर फॉर्मूला हमेशा वही रहा कि कुछ नया इंट्रोड्यूस करें, तो उनको लगा कि एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है कि हम थोड़ा सा किसी रीजनल इन्फ्लुएंस को लेकर आएं। और ऑब्वियसली जो लोग नॉर्थ के थे तो पंजाबी का आना तो लाजमी था। और ये सारा पॉपुलर म्यूजिक का के पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में जिसने काम किया वो था एमटीवी और चैनल वी का आगमन। तो 90s में ये दो चैनल जब आए जो कि सिर्फ संगीत के से ओरिएंटेड थे, ये बाबा साइकिल के बारे में स्पेशली, कि ये एक अकेले ऐसे आर्टिस्ट थे जो एमटीवी इंडिया पे सबसे ज्यादा प्ले हुए आज तक। बहुत सारे आर्टिस्ट आए, बहुत सारे आर्टिस्ट चले गए, लेकिन बाबा साइकिल के जो नंबर ऑफ प्लेज हैं एमटीवी इंडिया पे वो आज तक भी हाईएस्ट हैं।
इसके बाद बिल्कुल बदल गया बॉलीवुड का संगीत भी, मानेंगे इसको सही कि इन सारे जो संगीतकार या गीतकार या जो गायक आए इंडी पॉप में 1990s में, कहीं उनका एक लक्ष्य था कि हमें बॉलीवुड में ही जाना है?
किसी हद तक मैं अग्री भी करूंगा और नहीं भी, कि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट आए जो बॉलीवुड में जाना चाहते थे और गए भी। मोहित चौहान एक अलग बात है कि उनको ऑलमोस्ट 10-12 साल लग गए बॉलीवुड की जर्नी तय करने में अपने पहले गाने से, लेकिन इवन बॉलीवुड को भी थोड़ा टाइम लगा इस इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने में। 90s में पहली एल्बम जब बाबा साइकिल की आई, मिड 90s तक भी कहीं बॉलीवुड में कहीं कोई शिकन तक नहीं थी कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक को कहीं रिकॉग्निशन हो, किसी तरह के अवार्ड्स हो, किसी तरह का कुछ भी हो। बल्कि एमटीवी ने ही जब इंडिपेंडेंट साउथ एशियन म्यूजिक अवार्ड शुरू किए, जिसमें पूरे साउथ एशियन पर्सपेक्टिव को, इवन पाकिस्तान को भी काउंट किया गया, उसमें जुनून बैंड को काफी रिकॉग्निशन मिला, तो वहां से ये रिकॉग्निशन शुरू हुआ।
आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम, गाना बजाना।
और एक बार जब बाबा साइकिल की बॉलीवुड में एंट्री हो गई तो फिर तो मतलब उनको रोकने के लिए कुछ था ही नहीं। उन्होंने एक्टिंग भी करी, वो कुछ जगह डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे कुछ टीवी शोज में।
गाना बजाना, खाना पीना, गाड़ी में होगा सनम, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
मोहित, SBS हिंदी के स्टूडियो में आने के लिए, बाबा साइकिल पे इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।